ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकतामायं ददाति स्ववदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं मितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् साहागना ललिता श्रीविशाखावितं स। हे कृष्णकरुणा सिन्धुदीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुव्यस्य कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। टुगेदर एवरीवन, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाक्षाद्विजयिने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका प्रभुपाद का दिया हुआ ये दिव्य कार्यक्रम सुबह भागवत सायंकाल भागवत गीता सुबह के कार्यक्रम में स्वागत है। बड़े प्रेम से आप सब हमारे पीछे बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्याम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्य। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नेष्ट की। बिफोर रिसाइटिंग दिस श्रीमद् भागवतम विच इज अवर वेरी मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अन टू दी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड नारायण अन टू नारायण ऋषि द सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग अन टू मदर सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग अन टू श्रील व्यासदेव द ऑथर अन टू श्रील प्रभुपाद अवर लविंग स्पिरिचुअल मास्टर। श्रीमद् भागवत
इसको खोल के दे नहीं चल रहा।
श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदी ठीक है हिंदी पंचम स्कंद और दसम अध्याय और बारहवां श्लोक। जड़ भरत तथा महाराजा रघुगुण की वार्ता। आप कृपया सब मेरे पीछे बोलो विशेष बुद्धे स्वामी तथा सेवक के भेद की बुद्धि का। बीबरम क्षेत्र प्रसार मना किंचित चा भी पश्यामा मैं देखता हूं यता जो ना नहीं व्यवहारता व्यवहार के सिवा अन्यता अन्य का कौन ईश्वर स्वामी। तत्र इसमें किम कौन ईशतव्यम शीतम वक्ष में किया गया क्षमा कीजिए वश में किया गया तथापि तो भी राजन हे राजा करवाम मैं करूं किम क्या ते तुम्हारे लिए। वशेष बुद्धेर विवरम मनाक चा पश्याम यन व्यावहार तो अन्यता का ईश्वरस्तत्र किमीशित वयम् तथापि राजन करवाम किं ते। वशेष बुद्धिर विवरम मनाक चा पश्याम यन यन है यत्र है यत्र यत अच्छा इधर थोड़ा प्रिंट में यत् व्यवहार तो अन्यता का ईश्वरस्तत्र किमीशित वयम् तथापि राजन् करवाम किं ते। बोलो। माताएं कोई माता नहीं बोलते, अनुवाद कृपया सभी बोलने का प्रयास करें। हे राजन, यदि आप अब भी यह सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। किंतु मैं यह कह सकता हूं कि यह अंतर क्षणिक है और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। उस दिशा में कौन स्वामी है और कौन दास, प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है। अतः ना तो कोई स्वामी है ना कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे अंगीकार करूंगा। कृपया आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तात्पर्य हमारे परम धरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अहम मामेति, मैं यह शरीर हूं और इस शारीरिक संबंध से ही वह मेरा स्वामी है, मेरा दास है, मेरी पत्नी है या मेरा पुत्र है। ये सारे भाव शरीर के परिवर्तन तथा प्रकृति की व्यवस्था के कारण अस्थिर हैं। हम समुद्र की तरंगों में तैरने वाले तिनकों के समान एकत्रित हुए हैं, किंतु सारे तिनके लहरों के नियमों के द्वारा अवश्य एक दूसरे से पृथक होंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति संसार सागर की लहरों में उतरा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है, मिछे माया रवशे याचे वैसे खाचा हबू दुबू भाई जीव कृष्ण दास विश्वास कर ले तार दुख नाई। सभी स्त्री तथा पुरुष प्रकृति की तरंगों में तिनकों के समान तैर रहे हैं। यदि वे समझ लें कि वे श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं तो उनका तैरना बंद हो जाए। जैसा कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है, कामेश क्रोधा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण के कारण हमें अनेक वस्तुओं की इच्छा होती है और हमारी इच्छा या चिंता तथा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रकृति कोई एक शरीर प्रदान करती है। कुछ काल तक हम पात्रों की भांति रंगमंच में किसी अन्य के नियंत्रण में स्वामी या सेवक की तरह कार्य अभिनय करते हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य के रूप में इस प्रकार का अभिनय करना बंद कर दें। हमें चाहिए कि हम अपनी भूल स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। इस समय हमारा वास्तविक स्वामी तो प्रकृति है। देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवद गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। प्रकृति के सम्मोहन से हम सेवक तथा स्वामी बन रहे हैं, किंतु यदि हम श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों द्वारा अनुशासित होना स्वीकार कर लें तो यह क्षणिक अवस्था समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जैसा कि आप कुछ दिनों से अन्य भक्तों के द्वारा ये जो अध्याय चल रहा है जड़ भरत तथा महाराजा रहुगुण की वार्ता का सुन रहे हैं, जड़ भरत पूर्व जन्म में महाराजा भरत थे और प्रभुपाद उनके बारे में लिख रहे हैं कि छोटी अवस्था में ही उन्होंने घर बार त्याग दिया था। और महाराजा भरत जो थे ये सारे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। छोटी अवस्था में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार संसार का राज्य स्त्री पुत्र हजारों नौकर चाकर धन संपत्ति की कोई था नहीं और वन में चले गए और पुलहा आश्रम में रहने लगे, गंडकी नदी के किनारे। और इन्होंने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली। समाधि की अवस्था क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा के चिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। वो अवस्था वो स्टेज महाराजा भरत को प्राप्त हो गई। बहुत बड़ी स्टेज है ये। मैं अगर अपने अंदर झांक के देखूं तो मेरा मन संकल्प विकल्प में लगा हुआ है। वो स्टेज वो स्तर प्राप्त होने पर भी महाराजा भरत का पतन हो गया। पतन कैसे हुआ? एक हिरणी जो नदी का पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा, शेर के धाड़ने की आवाज सुनकर हिरणी डर गई कि शेर मेरे को खा जाएगा। घबराहट में उसने नदी पार करना चाही, वो पानी में कूद गई और जब वो हिरणी नदी पार कर रही थी, नदी पार करते करते उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी, बच्चा गर्भ उसका गिर गया और उसने नदी पार कर ली। नदी पार करके पीछे देखा अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए और उसकी मृत्यु हो गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत संत थे, बड़े महान थे, जिनका तप त्याग असीम था। सोचने लगे ये अनाथ बच्चा, मां का अभी इसका कोई नहीं है, पानी से निकाल के ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। वैसे तो अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन जैसे हिरण बड़ा हुआ उसको छोड़ देना चाहिए था उन्हें, लेकिन महाराजा भरत का मोह उस हिरणी के बच्चे से हो गया। तो भगवद गीता में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये मोह माया कितनी प्रबल है। अगर मैं अपने अंदर झांक के देखूं तो मैं मोह माया से भरा पड़ा हूं। मेरा तप त्याग महाराजा भरत की तरह नहीं है। मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, सारे दोष मेरे में हैं। ऐसी अवस्था में मेरा क्या होगा? महाराजा भरत का इतना तप त्याग होने पर भी उस हिरणी के बच्चे से उनका मोह हो गया। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय बीत गया और महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया। बजाय हरि चिंतन करते अंतिम समय में हिरण का चिंतन हो रहा था। और उस अवस्था में उनके प्राणंत हो गए, शरीर छूट गया, अगला जन्म हिरण का हो गया। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम नास्ति यत् संशयः। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या अंतकाल में मैं भगवान का स्मरण कर पाऊंगा? ये हम सबको समझना चाहिए, ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। महाराजा भरत के दृष्टांत से सुखदेव गोस्वामी महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि जीव को बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। इतना तप त्याग होने पर भी महाराजा भरत का मोह हिरण से हो गया। तो लेकिन इतना तप त्याग होने पर जब हिरण के शरीर में उनकी आत्मा गई, उन्हें पूर्व काल की सारी घटना याद है। हिरण के शरीर में भी उनकी स्मरण शक्ति बनी हुई है, क्योंकि तप त्याग बहुत ज्यादा था और वो उसी आश्रम में आ गए जहां पहले रहते थे। कुटिया, घास फूस की कुटिया थी, वहीं रह करके जो समय हिरण के शरीर में बिताना था उन्होंने बिताया और सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया। जब उनका ये शरीर छूटा तब वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता के दो विवाह थे, पहले विवाह से कोई 9 बच्चे, दूसरे से 2, एक भाई बहन, ये जड़ भरत और इनकी बहन। तो इस जन्म में इनको पूरे जन्म की बात सब याद है। इन्होंने ये निर्णय कर लिया कि इस जन्म में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्यों? पूर्व जन्म में मैंने गलती कर दी, इस जन्म में नहीं करूंगा। और ऐसा वर्णन आता है कि इनको बड़ा कष्ट दिया गया इनकी भाभियों के द्वारा, ये बड़े हृष्टपुष्ट थे। कहा ये मुष्टंडा खाता है, काम कुछ नहीं करता, ऐसे खुरचन या कुछ ऐसे भूसी खा लेना, कोई बोलना ही नहीं मुंह से कुछ भी। खैर, इनके पिता ने इनको पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन ये पढ़े नहीं, जानबूझकर गुंगे बैरे बन गए, इसलिए इनका नाम पड़ा जड़ भरत। और एक दिन जा रहे थे तो राजा के कहार पालकी ढोने के लिए राजा की एक व्यक्ति की खोज में थे, उन्हें ये मिल गए, बड़ा तकड़ा आदमी है, इन्होंने पालकी उठा ली इतने महान होने पर भी। अभी ये कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहते, रास्ते में कीड़े मकोड़े हैं देखकर चल रहे हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। जब हम चलें तो 4 फुट आगे देख के चलना चाहिए, हमें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। अगर किसी जीव की हिंसा हम करते हैं तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है। तो पांव इनका आगे पीछे पड़ रहा था, राजा राहुगुण जो पालकी में बैठे हुए थे वो चिल्लाया, कौन हो तुम, क्यों ठीक तरह से पालकी नहीं ले जा रहे? राजा को अहंकार है बड़ा। बाकी बोले कि महाराज हम तो ठीक उठा रहे हैं, ये नया आया है जो ये छलांगे लगा रहा है इधर उधर। अभी राजा को पता लगा तो राजा ने बड़े व्यंग पूर्वक वचन कहे, तब उन्होंने अपना पहली बार मुखारविंद खोला और दिव्य ज्ञान राजा को दिया। इस श्लोक में भी बड़ा दिव्य ज्ञान है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कौन राजा कौन सेवक, हम सब प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण कहा ना कि प्रकृति क्रियामानानी गुणे कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से भरा हुआ जीव सोचता है कि मैं करता हूं, मैं ये करता हूं। हम सब प्रकृति के अधीन हैं। तो बड़ा दिव्य ज्ञान इन्होंने महाराजा राहुगुण को दिया और महाराजा राहुगुण इनका शिष्य बन गया था। और राहुगुण ने यह भी कहा था कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन मुझे ब्राह्मण के श्राप से बहुत डर लगता है कि मुझे क्षमा कर दो। तो भाई इतनी महान आत्मा ने मेरी पालकी उठाई थी, जब उन्होंने मुखारविंद खोला तो पता लगा उनको। तो जड़ भरत जी का दिया हुआ ज्ञान बड़ा दिव्य है। इस दिव्य ज्ञान के तात्पर्य में बड़ा सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं के अहम मामेति, मैं ये शरीर हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो रहेगा पर मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं। प्रभुपाद समझा रहे हैं अहम तो रहेगा है? लेकिन अहम अहंकार से ही अहंकार ठीक है, पर गलत अहंकार ठीक नहीं है। सही क्या है और गलत क्या है? गलत यह है कि मैं ये हूं, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये गलत है। तो सही क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये सही है। अपने आप को शरीर समझ लेना गलत है, जो महाराजा रहुगुण समझ रहा था, जबकि वो इतने बड़े पद पर है, वो राजा है। जरूरी थोड़ा कि अगर कोई राजा है तो वो अपने आप को आत्मा समझेगा, नहीं। आत्मा के स्तर पर वही आएगा जो परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है, जो परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त है। बाकी चाहे राजा है चाहे कोई है, वो अहंकार से भरा रहेगा। तो पूरे जीवन काल में महाराजा भरत के अवतार जड़ भरत ने अपना मुखार नहीं खोला था, मुखारबिंद नहीं खोला था, लेकिन राजा की जब बातें सुनी तो उन्होंने लगा भाई इसको ज्ञान देना चाहिए राजा को। ये राजा होते हुए भी इतना अहंकार से भरा पड़ा है। तो उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया कि हम सब प्रकृति के अधीन हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, जब तक हमारा जीवन है, हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि मैं ये जो प्रकृति के अधीन हूं, इससे मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। ये जो प्रकृति के तीन गुणों के मैं अधीन हूं, इसे किस कैसे मैं मुक्त हो पाऊं। तो आप सब जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये जो राधा रास बिहारी हैं, ये बहुत दयालु हैं, गौर निताय, अपार कृपालु, सीताराम लक्ष्मण बड़े दयालु। उन्होंने हम सब पतितों के उद्धार के लिए, कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए ऐसे महान विभूति श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया है, जिन्होंने हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया और जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हम कैसे प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो पद्धति जो इन्होंने दी है वो शास्त्रिक पद्धति है, वो पहले इन भगवान गौर निताय ने दी थी, वो ही उससे पहले कृष्ण भगवान ने दी थी। इस पद्धति को अगर हम हृदय से स्वीकार करते हैं तो हम भी प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। हम सबको बड़ी गंभीरता से इस पद्धति को अंगीकार करके, डायरी लाओ टीके जी की, इस पद्धति को हमने अंगीकार करना है। देखो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, दुर्योधन को भी समझाया कि भाई युद्ध मत करो, परमपिता स्वयं समझा रहे हैं। तुम्हारे भाई लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पांचों पांडव साधु हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं। खैर बात लंबी हो जाती है। दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं सुनी, कारण वो भक्त नहीं था। भगवान ने जब ये परामर्श दुर्योधन को दिया था, तुम पांच गांव पांच भाइयों को दे दो, संसार का राज्य तुम करो, तब दुर्योधन कहता है पांच गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितनी अज्ञानता, समझा कौन रहा है? परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण। फिर अर्जुन को समझाया, अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, साधु वृत्ति है, संत लड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्यों लड़ना है? भगवान ने समझाया, गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन ने स्वीकार किया, लड़ना युद्ध करना स्वीकार किया। तो आप देखो कि हम जब तक भक्त नहीं बनेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने ये भेष धारण कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शुद्ध हो गया। हां, अगर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मेरा मन संकल्प विकल्प को त्याग करके केवल हरि चिंतन में लगा है, तो मुझे बातें समझ में आएंगी। पर इस भेष में भी अगर मेरा मन भटक रहा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने आखिरी दम तक हमें समझाने का प्रयास किया। मैंने ये देखा कि आखिरी टाइम में मैं प्रभुपाद जी के चरणों में बैठा हुआ था वृंदावन में, जब उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला का जो अध्याय चल रहा था उसको प्रभुपाद जी समझा रहे थे, और इतने सुंदर ढंग से समझाया, कभी आप पढ़ो तो सारा ही प्रभुपाद का ढंग बहुत सुंदर है, पर वो तो अति सुंदर था, वो आखिरी ट्रांसलेशन था। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें प्रभुपाद जी के इन शब्दों पर ध्यान देना होगा, इन शब्दों को जीवन में धारण करना होगा। शब्द क्या है मैं पढ़ देता हूं। ये तमाल कृष्ण महाराज की डायरी से ये शब्द लिए गए हैं, पेज नंबर 16। श्रील प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी नॉट एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद जी ने इस बात पर बड़ा बल दिया कि जो हमारी संस्था है, जिनके संस्थापक आचार्य स्वयं हैं प्रभुपाद। वैसे प्रभुपाद ये कहते हैं लेक्चरों में, भाई इस आंदोलन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, पर लेकिन मंद पड़ गया था, इस संस्था की स्थापना इन्होंने की। हमारी ये जो संस्था है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है, दिस वॉज इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरीज टू डिवोटीज। ये इस संबंध में था, तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं कि भक्तों को जो तनख्वाह दी जाती है, एंड सप्लाइंग special facilities to ग्रिस्तास, और ग्रिस्तुओं को विशेष सुविधा दी जाती है। प्रभुपाद ट्रस्ट, प्रभुपाद ने इस बार पर बल दिया, जोर दिया बड़ा, क्या दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य। ये जो कृष्ण भावना है इसका अर्थ यही है, वैराग त्याग। वन हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड येट इन डेवलपिंग वैराग्य, जो अभी वैराग को उत्पन्न नहीं करना चाहता या इसको बढ़ाना चाहता है, कुड नॉट बी मेंटेन बाय द सोसाइटी। संस्था जो है ना उसका भरण पोषण नहीं कर सकती। अदरवाइज द होल इंस्टीट्यूशन वुड बिकम वीकन, नहीं तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारा ये जो आंदोलन है, ये कमजोर पड़ जाएगा, इसमें कमजोरी आ जाएगी। इफ ग्रिस्तास वर रेंडरिंग एसेंशियल सर्विस द टेम्पल कुड प्रोवाइड लिविंग फैसिलिटीज, अगर ग्रिस्ती जो हैं कोई विशेष सेवा कर रहे हैं तो मंदिर उनको रहने की सुविधा देगा। बट दे हैड टू वर्क वॉलंटरली नॉट फैसिलिटीज, उन्हें स्वयं सेवक की तरह कार्य करना पड़ेगा, पैसे के लिए नहीं। यहां विचार करो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अगर हमने अपना आवागमन छुड़ाना है जो यहां वर्णन आ रहा है, तो ये केवल कृष्ण कृपा से ही छूट सकता है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का रास्ता केवल भक्ति है। गीता में भी भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग, बड़े योगों का वर्णन किया, लेकिन भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। तो हम भगवान अभी हम जब मैं मंदिर में कोई सेवा कर रहा हूं, ऊपर से सैलरी ले रहा हूं, तो सैलरी तो मिल जाएगी मेरे को, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान नहीं मिले, महाराजा भरत थोड़ी सी गलती हो गई, हिरण में ध्यान चला गया तो हिरण का शरीर लेना पड़ा, बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है। कृपा करके हम सब सोचें, सारे भक्त सोचें, सब निष्काम सेवा करें भगवान की, सकाम। और देखो जब भगवान स्वयं आए, ये भी कौन है, ये जेई गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौर है वही कृष्ण वही जगन्नाथ है। अपनी आचारी प्रभु जीव रे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या ना धनम ना जनम ना सुंदरियम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर आहितु की तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे वो बड़ा बहुत बड़ा कवि नहीं बनना, प्रवक्ता नहीं बनना, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? अहोइत की। मैं आपकी भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, उसी से मेरा आवागमन कटेगा और मैं अपने घर को, गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जा पाऊंगा, नहीं तो रास्ते में ही रह जाऊंगा। अभी इच्छा मेरी है कि वैकुंठ जाना है या रास्ते में रहना है। भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया, 18वें अध्याय में क्या कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूय तरम मया विमृश्ये तत्शेषेन जथे छसी तथा कुरु। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ मत हैं कलियुग के, वो अपने अनुयायियों को डंडे के जोर से उसमें रखते हैं, मार देंगे अगर उनका मत छोड़ा तो, ऐसे हैं कलियुग में। भगवान सर्वेश्वर हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अर्जुन को कहते हैं, ये गीता का परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन मैंने तेरे को दे दिया, अभी जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। तो हम स्वतंत्र हैं। दुर्योधन ने बात नहीं सुनी, सर्वनाश करवा दिया। अर्जुन ने बात सुनी, पांचों भाइयों को कुछ नहीं होने दिया भगवान ने। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये बड़े विचार, ये भक्ति का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आप सभी अच्छे हैं लेकिन और अच्छे बनो, निष्काम सेवा करो भगवान की। कई बार प्रश्न उठता, भक्त कहते हैं हमारी सिक्योरिटी क्या होगी, हम गृहस्थी हैं तो फिर आपका भगवान के चरणों में विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सोसाइटी उनका भरण पोषण नहीं कर सकती। वो जाके नौकरी करें, पैसे कमाएं, सोसाइटी तो उनको रखेगी जो भक्ति करना चाहते हैं, जो निष्काम सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो गृहस्थी हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे वानप्रस्थी हैं, चाहे सन्यासी हैं। तो जड़ भरत जी का बड़ा दिव्य ज्ञान है। राहुगुण जी को उन्होंने ज्ञान दिया, राजा होने पर भी राजा अज्ञानी है, अहम मा मेति, मैं और मेरा कर रहा है राजा। जड़ भरत जी बेचारे साधुओं को संतों को कौन पहचाने, जब उन्होंने मुखारविंद अपना खोला और दिव्य वाणी उनके मुख से निकली तो राजा राहुगुण की आंखें खुल गईं। तो आवश्यकता है प्रेमा भक्ति की। सुबह हम रोज गाते हैं ना, प्रेमा भक्ति जहां होइते अविद्या विनाशे जाते, वेदे गाए यहां राचरित। जहां प्रेमा भक्ति है ना, वहां अविद्या नहीं आ सकती। पर मैं अगर देखूं झांक करके, क्या मेरे अंदर प्रेमा भक्ति है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं अविद्या से भरा पड़ा हूं, अज्ञानता से भरा पड़ा हूं। और ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से हम अज्ञानता से निकल सकते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। संदेह है मेरे मलिन मन पर। मन बड़ा मलिन है। मन विषयों का चिंतन करने के कारण, विषयों को भोगने के कारण, पाप कर्मों के कारण बड़ा मलिन हो चुका है। लेकिन इनकी कृपा से, ऐसे भगवान गौर नेता की कृपा से जगाई मदाई जैसे शुद्ध हो गए, जो बड़े पापी थे। पशुओं का उद्धार हो गया, झारखंड में पशु भी कीर्तन करने लगे। तो मेरे पास भी, हम सबके पास ये मौका है अपने कल्याण का। हम सबको गंभीर बनना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है निष्काम सेवा के द्वारा। सकाम सेवा करोगे फल मिल जाएगा, एक लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कर्मी जो हैं फ्रूटी वर्कर वो तो वो बेकार हैं, उनको सिवाय पैसे को कुछ दिखता ही नहीं। ये श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले रे अशांत। भुक्ति, भुक्ति का क्या शब्द क्या होगा, अर्थ क्या होगा, कौन जानता है? भुक्ति, भुक्ति प्रभुपाद ने कुछ और अर्थ कहा इसका मेरे, चलो भोग करना। मुक्ति ज्ञान मार्गी जो मुक्ति चाहते हैं, सिद्धि जो सिद्धि है अनिमा लगिमा प्राप्ति, कामी जो काम भावनाओं से भरे पड़े हैं, सदा स्त्रियों का चिंतन कर रहे हैं, ये सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम है, कोई कामना नहीं, एता एव शांत, वो शांत रहता है। तो प्रभुपाद बड़ा बल दे रहे हैं, ये मेरे ऊपर है कि मैं उनकी आज्ञा पालन करूं या ना करूं। अगर मैं करूंगा तो तरूंगा, नहीं करूंगा तो मरूंगा। इच्छा मेरी है मैं मरूं या तरूं। अर्जुन ने आज्ञा पालन की तो तर गए, दुर्योधन ने आज्ञा पालन नहीं की तो मर गए, सर्वनाश हो गया, इतिहास दोहराता है। तो समय समाप्ति पर है, आज मीटिंग है, तो रजोगुण के कारण हमें अनेक वस्तुओं की इच्छा होती है और हमारी इच्छा या चिंता तथा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रकृति कोई एक शरीर प्रदान करती है। हमने प्रकृति के द्वारा दिया हुआ शरीर नहीं लेना, अभी है, इससे कैसे बचेंगे हम? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिम अभ्यम। अगर हम सब महात्मा बन गए नाम के नहीं काम के, तब हम राधा जी के अधीन आ जाएंगे, तो फिर हमें दिव्य देह मिलेगा राधा कृपा से, कहां? वैकुंठ लोक में, गौलोक धाम में, सत चित आनंद विग्रह। उसकी इच्छा हम सबको करनी चाहिए, ये आंदोलन उसी के लिए है। कुछ काल तक हम पात्रों की भांति रंगमंच पर किसी अन्य के नियंत्रण में स्वामी या सेवक की तरह कार्य अभिनय करते हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य के रूप में इस प्रकार का अभिनय करना बंद कर दें। हमें चाहिए कि हम अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। हमारी मूल स्वाभाविक प्रकृति क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरि नितदास। अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया मैं भगवान का सेवक हूं तो आनंद मंगल। सेवक मैं आज भी हूं पर अपने मन का, इंद्रियों का, भगवान का नहीं, इसलिए दुखी हूं बड़ा। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। इस समय हमारा वास्तविक स्वामी तो प्रकृति है, प्रकृति स्वामी है, लेकिन हमने राधा जी को अपना स्वामी बनाना है। योग माया और महामाया, अभी महामाया हमारी स्वामी नहीं है, लेकिन हमने योग माया जो भगवान से हमें मिलाएगी उन्हें राधा रानी को अपना स्वामी बनाना है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। अगर राधा जी को मैंने अपना स्वामी बना लिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, पर ये जो महामाया मेरे बेड़े को मझधार कर देंगी और मुझे भवरूपी सागर में गोते खाने पड़ेंगे। हम इस समय हमारा वास्तविक स्वामी तो प्रकृति है, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है, प्रकृति के सम्मोहन से हम सेवक तथा स्वामी बन रहे हैं, किंतु यदि हम श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों द्वारा अनुशासित होना स्वीकार कर लें। ये एक बड़ी जरूरी बात है, भगवान और भगवान के सेवकों द्वारा शासित होना। जैसा भगवान के भक्त हम पर शासन करें वैसा हम स्वीकार कर लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। अभी ऐसा कि छोटे मंदिरों में से भक्त बड़े मंदिरों को भागते हैं, सुविधा ज्यादा है, वो स्वीकार नहीं कर रहे, और बड़े मंदिरों वाले भी छोटे मंदिरों का ध्यान नहीं करते। महाप्रभु ने पृथ्वी त्याच यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। बड़े नगर में हो गया, छोटे नगरों में नहीं हुआ, मैं बड़ी सुख सुविधा में बैठा रहा तो मुझे इनकी कृपा कैसे मिलेगी। जो गौर भगवान नंगे पांव सारे भारत का भ्रमण किया, लोगों को भक्ति का दान दिया, कितने कष्ट उठाए हैं, सब जगह नाम होना चाहिए। तो जैसे यहां कहा है, जो नहीं करते स्वीकार शाश्वत सेवकों द्वारा अनुशासित होना स्वीकार कर लें तो यह क्षणिक अवस्था समाप्त हो जाए, ये अवस्था समाप्त हो जाएगी। कृपा करके आप सब इस अवस्था को, जो क्षणिक अवस्था है, दुखदायी अवस्था है, इसे समाप्त करो और सुख रूपी अवस्था यानी कि कृष्ण के नित्य दास बनो और सुख रूपी अवस्था को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न तो किसी को कोई होगा नहीं है ना, समय भी नहीं है। हरे कृष्ण।